मुख्य समाचारों में फेडरल चुनाव अभियान का अपने अंतिम पखवाड़े में प्रवेश। भारत इंदौर में एक भीषण अग्निकांड में 7 लोग मृत्यु और टेनिस सनसनी कार्लोस अल्काराज राफेल नडाल को हराने वाले पहले युवा किशोर खिलाड़ी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। फेडरल चुनाव अपने अंतिम पखवाड़े में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन महत्वपूर्ण सीमांत सीटों पर कब्जा करने के प्रयास में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वहां लगातार दूसरे दिन प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री ने कोवन के बहुसांस्कृतिक समुदाय पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ये सीट लेबर के पास सिर्फ 0.8% से है। श्री मॉरिसन पर्थ के उत्तर में एक वियतनामी सांस्कृतिक केंद्र के लिए $1.6 मिलियन की घोषणा करने के लिए पियर्स में लिबरल उम्मीदवार विंस कॉनली के साथ दिखाई दिए।
There are so many projects like this all around the country, and what they are places where people from their communities can come together, make their own community stronger, which makes their contribution to the broader Australian community even stronger too.
इससे पहले श्री मॉरिसन ने दिन में वाइनरी, डिस्टिलरी, ब्रूवरीज के लिए $20 मिलियन के पर्यटन पैकेज की रूपरेखा बताई थी। लेबर नेता एंथनी एल्बनीसी लॉन्सेस्टन में हैं, जहां उन्होंने तस्मानियन नौकरियों और विनिर्माण के भविष्य में $26 मिलियन के निवेश की बात की है। श्री एल्बनीसी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में अंतिम स्थान पर है, जिसमें अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। लेबर मौजूदा नौकरियों को सुरक्षित करने और रोजगार के नए अवसरों का समर्थन करने के लिए स्थानीय उद्योग के साथ नई साझेदारी का वादा कर रही है। श्री एल्बनीसी का कहना है कि इसमें हरित हाइड्रोजन परियोजना के सपोर्ट के लिए $5 मिलियन और कार्बन शून्य प्रमाणित व्यवसाय मॉडल को लागू करने में मदद के लिए $11 मिलियन शामिल हैं।
All of these measures are consistent with our plan to shape the future, because if you don't shape the future will shape you. We need to seize the opportunities that are there from the transition to a clean energy economy. Seize the opportunities that are there to create more secure work and to make more things here in Australia, and in particular to make things here in Tasmania.
पूर्व लेबर लीडर बिन शॉर्टन ने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। श्री शॉर्टन ने ट्विटर पर उम्मीद जताई कि वो चुनाव अभियान के अंतिम सप्ताह में आइसोलेशन से मुक्त हो सकेंगे। वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और नियमित रूप से परीक्षण आदि से वायरस के खिलाफ सावधानी बरतने की याद दिला रहे हैं, और ये तब है जब लेबर ने मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रदान करने की अपनी बात को छोड़ दिया है। और नेता एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि समय बदल गया है। ग्रीन्स ने ऑस्ट्रेलियन कलाकारों को एक लिविंग वेज देने के उद्देश्य से एक नया फंड लॉन्च किया है। आर्टिस्ट वेज नामक नीति 10,000 स्थापित या उभरते कलाकारों और कला वर्कर्स को एक वर्ष के लिए काम बनाने के लिए प्रति सप्ताह $772.60 का भुगतान करेगी। ये नीति उन लोगों के समान है जो फ्रांस और आयरलैंड में काम करते हैं, और इसकी लागत $277.5 मिलियन है। नई योजना की घोषणा करते हुए ग्रीन्स की प्रवक्ता सारा हैंसन यंग ने मॉरिसन सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि इसने ऑस्ट्रेलियन कलाकारों के साथ शटडाउन और COVID-19 के कारण रद्द होने के दौरान अवमानना का व्यवहार किया है। वो कहती हैं कि महामारी के दौरान अपर्याप्त सरकारी सपोर्ट के कारण रचनात्मक ऑस्ट्रेलियन लोगों की एक पीढ़ी खो सकती है। अनुमान है कि लगभग 2 लाख लोग कला क्षेत्र में काम करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के GDP में सालाना लगभग $15 अरब का योगदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने ब्रिस्बेन में अपने सोलोमन द्वीप के समकक्ष से मुलाकात की, जहां चीन के साथ प्रशांत राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर ऑस्ट्रेलिया की गहरी चिंता पर कथित तौर पर चर्चा की गई। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ये पहली बार है जब दोनों मंत्रियों ने बैठक की है। सोलोमन के प्रधानमंत्री मनसे हे सोगावरे ने अपने संसद को बताया कि उनके देश को चीन के साथ हुए समझौते पर विदेशी शक्तियों द्वारा आक्रमण की धमकी दी गई थी। अब ये वो दावा है जिसे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने खारिज किया है। पर्यटन और व्यापार मंत्री तिहन ने ABC को बताया कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी इंडो पैसिफिक में एक पसंद का सुरक्षा भागीदार है।
We've just got to continue working and building that relationship and making sure that they understand that the role that Australia can play in the Pacific is one that in the end is in the best interest of Pacific nations across the board.
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे ने सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शनों के बीच सेना को व्यापक अधिकार देते हुए आपातकालीन की स्थिति घोषित की है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि इससे सैन्य कर्मियों को लोगों को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और सार्वजनिक विरोध को नियंत्रित करने की शक्ति है। श्रीलंका अत्यधिक खराब आर्थिक संकट में है और पहली बार विदेशी ऋणों पर चूक भी रहा है। 22 मिलियन लोगों को भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी है। और भारत इंदौर की एक कॉलोनी में एक भीषण अग्निकांड में 7 लोग जिंदा जल गए। कॉलोनी की एक 2 मंजिला मकान में आग लगने के बाद राहत और बचाव दल ने वहां से 9 लोगों को बचाया है। ये घटना आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच बताई जा रही है। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 70 सेंट और भारत के 54.45 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज मेड्रिफ ओपन में हमवतन रफाल नडाल को क्ले कोर्ट पर हराने वाले पहले किशोर खिलाड़ी बन गए हैं। स्पेनिश टेनिस की 2 पीढ़ियों के बीच एक पल बने इस खेल में 19 वर्षीय कार्लोस ने सीधे सेटों में 6-2, 1-6, 6-3 से अपने ही आदर्श नडाल को हराया। सेमीफाइनल में कार्लोस का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच के साथ होगा। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। मेलबर्न में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। होबार्ट में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 2 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।